ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वपत्रेषु
भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 24वां अध्याय शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 31। इदं
इदं
विविक्तं
विविक्तं
जप्तव्यं
जप्तव्यं
पवित्रं
पवित्रं
मंगलं
मंगलं
परं
परं
निःश्रेयसकरं अपि च अपि श्रूयतां तत् वदामि वह। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामिवः। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामिवः। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामिवः।
पवित्रं मंगलं परम्
निःश्रेयसकरं चापि
इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं
निःश्रेयसकरं चापि
श्रूयतां तद्वदामि वः।
इदं यः विविक्तं
विशेष
जप्तव्यं
सदैव जप करने के लिए
पवित्रं
अत्यंत शुद्ध
मंगलं
कल्याणकर परं दिव्य
निःश्रेयसकरं
अत्यंत उपयोगी
च भी
अपि
निश्चय ही
श्रूयताम
कृपा करके सुने तत् वह।
वदामि
मैं कह रहा हूँ
वह
तुमसे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूँगा जो न केवल दिव्य
पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छुक हरेक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं, तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। तात्पर्य, विविक्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव द्वारा सुनाई गई इस स्तुति को संप्रदाय परक नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे अत्यंत रहस्यात्मक मानकर समृद्धि प्राप्त करने या शुभ जीवन लक्ष्य के लिए शिव के आदेशों का पालन करना चाहिए और भगवान की स्तुति तथा महिमा का गान उसी तरह करना चाहिए जैसा कि स्वयं शिवजी ने किया। अनुवाद को दोहराइए। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा,
जो न केवल
दिव्य
पवित्र
तथा शुभ है,
वरन
जीवन उद्देश्य को
प्राप्त करने के इच्छुक
हरेक के लिए
यही श्रेष्ठ स्तुति भी है।
जब मैं
इस मंत्र का उच्चारण करूं,
तो तुम सब सावधानी से
ध्यान पूर्वक
सुनना। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो प्रसंग ये चल रहा है कि राजा प्राचीन बर्हिषत के 10 पुत्र जिनको प्रचेता कहते थे, अपने पिता के आदेश के अनुसार तपस्या करने के लिए चले गए थे वन में। तो पिताजी ने उनको तपस्या करने के लिए क्यों भेजा था?
शुद्धिकरण
के लिए, ताकि ताकि अपने शुद्धिकरण के लिए तपस्या करके, ताकि आगे चल के वो सही भावना से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकें और उसके बाद उनको राज्य को संभालने की जिम्मेदारी होनी थी। तो ऐसे विशाल कोई कर्तव्य को संभालने के पहले तपस्या करनी चाहिए, आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक तैयारी करनी चाहिए, इसलिए वैदिक काल में ये एक नियम था, केवल प्रथा नहीं, एक नियम हुआ करता था कि जितने भी बड़े बड़े राजकुमार भी होते थे उनको जंगल में भेजा जाता था ताकि वो थोड़े वर्ष कम से कम वहाँ रह के तपस्या करें, ये समझ लें कि मनुष्य जीवन केवल आराम और भोग के लिए नहीं है। महाराज ऋषभ देव ने भी इसी तरह से अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। और कौन सा प्रसिद्ध श्लोक कहा था, बहुत सारे कहे, महाराज ऋषभ देव का कौन सा महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध श्लोक है इस संदर्भ में, जबकि वो अपने 100 पुत्रों को आदेश दे रहे हैं आगे चलने के लिए। हाँ, कौन सा है श्लोक? हाँ बोलो मनोज। वाह, बहुत अच्छा। इसका शब्दार्थ, शब्द भेद करके अर्थ समझाओ। न अयम, न अयम, अयम ये, न अयम क्या, न ये क्या, देह, न अयम देह, ये जो देह है अर्थात मनुष्य देह, फिर देह भाजाम, हाँ उनके लिए जिन्होंने कि देह को स्वीकार किया है और देह का भोग भी करना चाहते हैं, नरी लोके, नरी मतलब मनुष्य, लोके मतलब ये लोक, तो इस मनुष्य या पृथ्वी लोक के ऊपर जो देहधारी आत्मा हैं उनके लिए न, नहीं, क्या नहीं, नायम देह, देह भाजाम लोके, हाँ क्या मतलब,
कष्ट तो सब दुख कर भी करता है, तो ये शरीर कष्ट और काम करने के लिए नहीं है।
काम करने के लिए किस तरह का काम, कष्टान कामान, यह काम शब्द का तात्पर्य क्या है, भौतिक भोग की इच्छाएं, केवल भोग के लिए नहीं है। ये देह जो है, ये देहधारियों को जानना चाहिए कि ये जो मनुष्य देह है ये केवल कष्ट करने के लिए, सुबह से रात मेहनत करके और भोग करने के लिए नहीं है। अरहते न अरहते मतलब उनके लिए योग्य नहीं है ऐसे करना, जो देहधारी हैं, कैसे मनुष्य देहधारी, उनके लिए न अर्हते ये शोभा नहीं देता, ये योग्य नहीं है कि कष्टान कामान, कि वो इस प्रकार के कष्ट का जीवन बिना वजह व्यर्थ ले लें केवल अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। क्यों, विड़भुजाम, ये जो जंगली प्राणी होते हैं जैसे सुअर आदि जो तरह तरह की चीज़ों को खाते हैं, इस तरह का जीवन उनके लिए भी उपलब्ध है, प्राप्य है, परंतु मनुष्य जीवन उनकी तरह नहीं है। फिर उसके बाद तो फिर इसको समझाओ,
तपस्या करने के लिए
किस तरह की तपस्या,
दिव्य
तपस्या, केवल तपस्या नहीं, तपस्या तो सभी लोग करते हैं, चाहे जानवर हो चाहे वो नास्तिक मनुष्य हो, सभी लोग तपस्या करते हैं, परंतु तपस्या ये तामसिक नहीं चाहिए, राजसिक नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सात्विक भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दिव्य तपस्या चाहिए, जिससे कि क्या फल मिलेगा, क्या होगा इसके फल स्वरूप, शुद्ध, ये शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर तपो दिव्यम पुत्र का है, मेरे पुत्रों तपो दिव्यम पुत्र का, ये ना सत्वम शुद्धेत, सात्विक जीवन, सत्व मतलब शुद्धिकरण, शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या मतलब,
ये तपस्या करने
से किस तरह का सुख, सौख्यम सुख, किस प्रकार का सुख, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक, तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी दिव्य तपस्या करे जिसके फलस्वरूप उसे वो दिव्य या आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो। और आध्यात्मिक आनंद का लक्षण क्या है, हम भेद कैसे कर सकते हैं भौतिक आनंद में और आध्यात्मिक आनंद में, कौन से एक शब्द का प्रयोग किया है इस श्लोक में, अनंतम, तो क्या तात्पर्य है इसका,
ब्रह्म सुख
जो है आध्यात्मिक सुख वो शाश्वत होता है, शाश्वत अर्थात अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसके विपरीत जो संसार का सुख होता है वो क्षणभंगुर होता है, क्षणिक होता है। इसलिए यहाँ आध्यात्मिक सुख कब की परिभाषा क्या है, सर्वप्रथम ये अनंत है, तो इसी बात को यहाँ पर शिवजी भी उन्हें कह रहे हैं। तो वो इस उद्देश्य से ही प्रचेता गण सब तपस्या करने के लिए गए थे ताकि उनका शुद्धिकरण हो जाए, उनको पता चले कि आगे चल के उनको कितने बड़े जिम्मेदारी संभालनी है, और उसके लिए आध्यात्मिक और मानसिक और शारीरिक तैयारी उनको करनी थी, तो आए थे यहाँ पर। और उनका अहो सौभाग्य था, क्या सौभाग्य हुआ उनका, अहो सौभाग्य तो था, लेकिन वो क्या था सौभाग्य, शिवजी मिल गए उनको, शिवजी आए, खास उनको देखने के लिए आए, उनको मिलने के लिए आए, कैलाश से शिवजी सीधे यहाँ पर आए उनको मिलने के लिए। हाँ, क्यों आए, क्यों आकर्षित हुए, हमारे सामने तो शिव जी नहीं आते, कब हम इतने जप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे सामने शिव जी नहीं आते हैं, उनके सामने क्यों आए, क्योंकि वो बड़े भक्त थे, क्योंकि बहुत अच्छे भक्त थे वो, इसलिए शिव जी आकर्षित हुए। जिस प्रकार से भगवान केवल भक्ति से आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी केवल भक्ति से आकर्षित होते हैं। यदि हम भक्तों को आकर्षित करना चाहें भौतिक वस्तुओं के द्वारा या भौतिक प्रलोभन के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में नव वृंदावन में थे, हमारा जो इस्कॉन का प्रकल्प है न्यू वृंदावन, तो वहाँ पर जब थे तो एक भारत के जादूगर वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए, जादू है तो ऐसे चमत्कार कर दिए, तो बाहर की दुनिया में तो लोग इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि अरे इन्होंने कुछ उठा लिया, वो अभी ज़मीन के ऊपर ऐसे ऐसे ही है, कोई आधार के बिना, कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने केवल दांतों से एक बहुत भारी गाड़ी को खींच लिया, इस तरह के कार्य सब कर रहे थे, तो भक्त वहाँ इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, शुरुआत में थोड़ा हा हा वो कर रहे थे कि अरे क्या देखो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब प्रभुपाद ने कहा कि इसमें क्या है, अच्छा ये सब इतने जादू आप दिखा रहे हो, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप जन्म मृत्यु को के चक्र को गायब करने की जादू कर सकते हो क्या, आप इतनी चीज़ों को गायब कर दिया आपने, तो इस चीज़ को गायब कर सकते हो क्या। तो वो जादूगर ने प्रभुपाद जी से कहा, वो जादू स्वामी जी केवल आप कर सकते ये संसार का जो जादू है ये बस वैसे ही है जादू, मतलब वास्तव में नहीं करते, कुछ छल होता है, कभी यहाँ छुपा लेते हैं, कुछ अचानक हाथ में दिखा देते हैं, वैसे यहाँ पे उनका रखा हुआ होता है, इसी तरह से निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से दूर करने के लिए व्यक्ति को इस तरह के छल से काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी जैसे एक महान महाभागवत की आवश्यकता है, जो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इन भौतिक ऐश्वर्यों से और कलाओं से भक्त भी प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु यदि कोई बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, भौतिक दृष्टि से अयोग्य माना जाए, आकर्षक नहीं माना जाए, परंतु बहुत शुद्ध हृदय का है, उसके अंदर सारे वैष्णव गुण विद्यमान हैं, तो सारे भक्त ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। भले दुनिया उनको ठुकराए, उनको कहे कि ये तो तुच्छ आदमी है, परंतु यदि भक्ति के गुण उसमें दिखाई पड़े तो सारे भक्त आकर्षित हो जाते हैं। तो भक्ति ही सर्व आकर्षक गुण है। इसलिए श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित करती हैं। भगवान कृष्ण का नाम है मदन मोहन। क्या अर्थ है मदन मोहन का? मदन कौन है?
कामदेव
है। और मदन मोहन कृष्ण को क्यों कहा गया है?
आकर्षित करते हैं,
क्योंकि मदन को भी वो भ्रमित करते हैं, आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी इतने आकर्षक हैं। क्यों? उनकी भक्ति के द्वारा आकर्षक है, और भक्ति के कारण परम सौंदर्य का गुण श्रीमती राधा रानी में है, इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी इस तरह से आकर्षित करते हैं कि श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसलिए श्री राधा रानी को क्या कहा गया है? मदन मोहन मोहनी। वो मदन मोहन को भी मोहित करती हैं। तो ये भक्ति का जो गुण है ये सभी को आकर्षित करता है, और खास करके भगवान और भगवान के भक्तों को। इसलिए शिव जी सब कुछ अपना छोड़कर, कैलाश कैलाश पर्वत में सब कुछ छोड़कर यहाँ प्रचेताओं के पास आए, और उन्होंने कहा मैं अब आपको ऐसे एक मंत्र सिखाऊंगा जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके भक्ति से मैं आकर्षित हो गया हूँ, और आगे चल के जब ये शिव जी के आदेश का पालन करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, लंबे समय तक तपस्या करेंगे, उसके बाद क्या होता है? कौन प्रकट होते हैं उनके सामने? स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान उनसे क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक?
वरम विनीतम भद्रम थे यूयम में नृपनंदन सौहार्दे न
पृथक भाव। आगे फिर तुष्ट हम सौहृदे न वह। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रचेतगण, हे नृपनंदनाह, हे राजा के नृप, नृ मतलब मनुष्य, प मतलब पालन करने वाला अर्थात राजा, नंदन अर्थात पुत्र, हे नृपनंदनाह, हे राजकुमारों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। जिस प्रकार से शिव जी भी कह रहे हैं ना उनको कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए आपके सामने आया हूँ, तो भगवान भी स्वयं कहते हैं भद्रम, आपका भद्र हो, कल्याण हो आपका, तुष्ट हो हम, मैं बहुत तुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ आपसे। क्यों? सौहार्द देना अपृथक भावम। तो क्योंकि आप सब एकजुट होकर मेरी सेवा कर रहे थे, परम धर्म का पालन कर रहे थे, और आपके बीच में जो एक सौहार्द का संबंध है, सौहार्द अर्थात मैत्री का, बहुत घनिष्ठ निस्वार्थ मैत्री का जो संबंध आप सबके बीच में है, इसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण हमारे तपस्या आदि से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि हम सब वैष्णवों के बीच में कैसे संबंध बनाए रखते हैं, हमारे किस प्रकार से वैष्णव गुण हमारे अंदर हैं, उसके ऊपर निर्भर है भगवान की प्रसन्नता। तो शिव जी और भगवान दोनों ही प्रचेताओं के प्रति आकर्षित इस कारण से हुए हैं। और अब शिव जी उनको वो रास्ता बतलाने वाले हैं, वो उपाय देने वाले हैं, जिसके द्वारा वो स्वयं भगवान को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इदम विविक्तम, तो यह बहुत ही विशेष, क्या विशेष, जपतव्यम, सदैव जप करने के लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा, एक मंत्र बताऊंगा मैं, जो कि सदैव आपको जप करना चाहिए। पवित्र ये कैसा है, ये पवित्र है, मंगल है और परम है। परम अर्थात दिव्य, निःश्रेयस करम, निःश्रेयस, ये शब्द आपने सुना है ना पहले, कहाँ सुना है,
निःश्रेयस,
हाँ
निःश्रेयस
लोकस
निश्चितम गृहीत,
हाँ
कार्पण्य दोष,
तो क्या इसका अर्थ है यहाँ पे शब्द का,
श्रेयस्कर,
श्रेयस्कर है, तो क्या है मतलब श्रेयस्कर का, कि मेरे लिए वास्तव में लाभदायक क्या है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास जाकर कह रहे हैं, अब मैं डावाडोल हो चुका हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे हित के लिए क्या है। निश्चितम ब्रूहितम, इसलिए निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है, श्रेयस्कर क्या है। तो श्रेयस के विपरीत कौन सा शब्द है, विपरीत नहीं लेकिन श्रेयस से मिलकर, प्रेयस, तो प्रेयस और श्रेयस में अंतर क्या है।
श्रेयस मतलब कि बहुत लंबा समय तक,
दीर्घकालीन कल्याण, वास्तविक जो हमारा कल्याण है, हमारी भलाई जिसमें है, वो है श्रेयस। और प्रेयस
अभी के लिए,
जो तत्कालीन बस थोड़ा कुछ लाभ मिलता है उसको प्रेयस कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं कि हमें श्रेयस के पीछे होना चाहिए, न केवल प्रेयस के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेयस मतलब तत्कालीन चीज़ की, तो तत्कालीन सुख को त्याग कर दीर्घकालीन सुख, अनंतम ब्रह्म सौख्यम, उस सुख की प्राप्ति के लिए जो तपस्या की जाती है उसको तपो दिव्यम कहते हैं। तो वास्तव में इसका मंगल होना चाहिए व्यक्ति का। निःश्रेयस कर अत्यंत उपयोगी च अपि, निश्चय ही ऐसा है। और क्योंकि जो इस जो मंत्र मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इतना उपयोगी है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, श्रूयताम, कृपा करके सुने। कैसे सुने, तत् वदामि वह, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप ध्यान से सुनना। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूँ तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। तो ये मंत्र, ये वैदिक शिक्षा प्रणाली है। अभी आज हमारे बीच यहाँ पे हरिकेश्वर प्रभु हैं, महानंद प्रभु है, ज्वालादा माता जी है, जो कि हमारे गुरुकुल से संबंधित हैं। वो अभी आगे चल, अभी गुरुकुल तो प्रारंभ हुआ है, आपको पता है ना, गोकुलानंद गुरुकुलम, तो ओलमणि नंदग्राम गौशाला के पास में ज़मीन ली है, तो वहाँ पे गुरुकुल प्रारंभ होगा, अभी बेलगाम शहर में है। तो ये तीनों भक्त और भी अन्य भक्तों के साथ ये गुरुकुल में सेवा करने वाले हैं। तो गुरुकुल में जैसे प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है वैसे शिक्षा प्रणाली चलाने की इच्छा है भक्तों की। तो यहाँ अभी जो शिक्षा प्रारंभ की है, अभी क्या हो रहा है, बच्चों को श्लोक आदि पढ़ा रहे हो, तो जो आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो श्लोकों को बोलते हैं, वदामी, वो क्या वो बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ वदामी, और तुम लोग ध्यान से सुनना और सुन के दोहराना। इसी तरह से शिक्षण हुआ करता था। तो जो आचार्य होते थे वो मंत्रों का उच्चारण करते थे, और जो छात्र होते थे वो लोग बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनते थे, और जैसे सुनते थे वैसे उच्चारण करते थे, और यदि उच्चारण में कोई गलती हो जाए या कोई शब्दों का इधर उधर, अक्षर इधर उधर हो जाए, तो फिर आचार्य उनको ठीक करते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। इसलिए शिव जी भी उसी पद्धति को स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं श्रूयताम तद्वदामि वह, बहुत ध्यान से तुम्हें सुनना चाहिए ये मैं जिस मंत्र का उच्चारण करूँगा, क्योंकि ये मंत्र जो है ये कोका कोला पेप्सी कोला टाइप मंत्र ऐसे शब्द नहीं है, ये बहुत ही दिव्य मंत्र है। पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयसकरम, ये चार गुण हैं इस मंत्र के, इसलिए श्रूयताम, इसलिए सुनो, बहुत ध्यान से सुनो और सुन के फिर उच्चारण करो। श्रवणम कीर्तनम, और श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तन करके क्या होता है, स्मरणम। स्मरणम करने का की पद्धति क्या है, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। जब हम ये करते रहेंगे स्मरण अपने आप हो जाएगा। उस दिन किसी ने मुझे एक वीडियो दिया था, शायद मैंने भेजा था ना, तो हरिकेश्वर तो कैसे याद करना चाहिए। तो एक सज्जन है, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया कि उनके बचपन में उनके पिता ने और माता ने उनको कैसे कंठस्थीकरण की क्रिया सिखलाई, कैसे कंठस्थ करना चाहिए सब। और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में पीढ़ियों से ये चलती आ रही है, ये पद्धति बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को आपको कंठस्थ करना है, आप पहले कागज़ पे लिखिए, अपने हाथों से लिखिए, ध्यान से लिखिए, और उसको लिखते जाइए, और फिर उसको पढ़िए, उच्चारण करिए, उच्चारण करते रहिए, और फिर उसको सही अपने जहाँ सोते हो अपने बिस्तर के पास में, तकिए के पास में आप रखना, और रात को सोने के पहले 10 बार अच्छी तरह से पढ़ना, जोर से पढ़ना, उसको ध्यान से पढ़ना, जोर से पढ़ना, फिर अपने तकिया के पास रख लेना, फिर जैसे ही सुबह उठोगे तो फिर से उसे ले लेना, पढ़ना, और 10 बार फिर से पढ़ लेना ध्यान से, और ऐसे करते रहना, निश्चित ही ये स्मरण रहेगा। वो छात्रों को वो ऐसे सलाह दे रहे थे। तो हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। आप में से कितने बख्श लोगों को कंठस्थ करना पसंद करते हैं, बहुत सारे हमारे ये है ना, ब्रजेश कृष्ण को अच्छा लगता है, मनोज को अच्छा लगता है, आदि रस वो तेरे कितने अच्छा लगता है ना? तो ये कोशिश करो ऐसे श्लोकों को कंठ अच्छा अरे वाह, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही हम कर पाएंगे। तो हम लोग जब नए भक्त बने थे ना, हमारे पास हम इतने व्यस्त रहते थे, हमारे पास कोई समय नहीं होता था पढ़ने के लिए, करने के लिए, इतनी जिम्मेदारियाँ, और यहाँ भागो वहाँ भागो, और ये सेवा वो सेवा। तो पढ़ने के लिए तो हम क्या करते, 5 बीच में 5-5 मिनट मिल गया ना, 5 मिनट किताब लेके बैठ जाते थे, दस मिनट किताब लेके बैठ जाते थे, श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए समय नहीं मिलता था, तो कभी कभी कार्ड बना लेते थे या अपना कोई छोटा सा किताब रखते थे, जहाँ समय मिले सामने रख के उसको करके। एक भक्त था, मुझे याद है, क्योंकि उसको समय नहीं मिलता था तो कपड़े धोते समय यहाँ था वो अपने उस वहाँ पे एक श्लोक लगा दिया था। हमने उनको बोला था शौचालय में मत ले जाना ये क्योंकि ये भगवान का श्लोक है, तो खास उसके लिए वो ऊपर रखता था और फिर ऐसे 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 करके धोता था। और फिर एक भक्त था जो बर्तन आदि धोता था तो यहाँ कार्ड ऊपर रखता था, ऐसे 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 करके फिर वो करता था। इस तरह से श्लोक जिनको इच्छा है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, जहाँ है चाह वहाँ है राह। तो बहुत अच्छा ब्रजेश कृष्ण प्रभु, ऐसे ही आगे बढ़ो। आतुरता होनी चाहिए कोई काम करने के लिए, अन्यथा वह संभव नहीं है हमारे लिए। बहुत से बहाने हमको मिल जाएंगे, समय नहीं है, हम ये है वो है, बीमार है, परंतु यदि वास्तव में तीव्र इच्छा है तो वो हो पाएगा हमसे। समय का सदुपयोग करना है। तो इस प्रकार से बार बार उच्चारण करना है, इसको बार बार उच्चारण करके पढ़ना और फिर उच्चारण करना, पढ़ना और फिर उसको बिना पढ़े हुए बार बार बोलना, बार बार बोलना। चलते 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 हम लोग क्या करते थे, हम जब ब्रह्मचारी जीवन में थे, हम लोग जाते थे यहाँ से बस स्टेशन जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, चलते चलते तो हम लोग श्लोक बोलते बोलते जा रहे थे। तो एक बार वो श्लोक बोलने में इतना मग्न था, वो गाड़ी आके पाए टकराने वाली थी, फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि समय का उपयोग करके बार बार उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि स्मरण हो जाए। कई बार भक्तों की शिकायत ये रहती है कि हम जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, हमको भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक है कलयुग में, विशेष करके जब सारे बुद्धि स्मरण शक्ति आदि सब कम होती जाती है। इसके लिए एक ही उपाय है, श्रवण कीर्तन। बार 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 श्रवण कीर्तन करना है, फिर वो चीज़ मन में रह जाती है। तो इसलिए शिवजी यहाँ प्रचेताओं से कह रहे हैं श्रूयताम तद बदामि वह, कि बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी से सुनो। और उसी तरह से हमारे जप में भी, ये भी सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे पावन, सबसे मंगल, सबसे दिव्य मंत्र ये महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें भी ये सुनना चाहिए ध्यान से, और उच्चारण भी स्पष्ट करना चाहिए, और इसमें भक्ति जोड़ देनी चाहिए। तो अक्सर भक्त पूछते हैं कि जप करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या, क्या किस तरह जप करना चाहिए। तो इसका सरल उत्तर ये है कि हमें स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, ध्यान से श्रवण करना चाहिए, और बड़े भावनात्मक ढंग से बोलना चाहिए, फीलिंगली, मतलब अपने भक्ति भाव से करना चाहिए। ये तीन चीज़ें यदि हम करेंगे तो हमारा जप अच्छा होगा। और कभी कभी क्योंकि भक्त ध्यान से सुनते नहीं हैं और शुरुआत से उन्होंने उच्चारण करना इतना अभ्यास नहीं किया था, तो कई भक्त ऐसे हैं जो महामंत्र ठीक से नहीं बोलते हैं। आपने देखा है, सुना है कभी? कोई उदाहरण दीजिए, नाम मत लीजिए किस तरह से जब गलत ढंग से करते हैं, महामंत्र का कैसे कुछ अलग से बोल देते हैं। हाँ,
हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो क्या हो गया इसमें?
इसमें हरे कृष्ण हरे हरे लास्ट का
हरे हरे निगल लिया। तो ऐसे निगलने की प्रक्रिया बहुत होती है, शब्दों को बीच बीच में निगल लेते हैं, चले जाता है और भक्तों को पता नहीं चलता है। एक भक्त थे, वो बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो सब लोग बोलते थे कि ये भक्त गलत जप कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर एक भक्त ने क्या किया, टेप रिकॉर्डर उसके पास में रख दिया और बाद में उसको सुनाया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि मैं गलत जप कर रहा हूँ। ऐसे कई भक्तों के साथ होता है, क्योंकि हम लोग स्पष्ट उच्चारण नहीं करते और जब उच्चारण करते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कहीं हम एक दो शब्द निगल तो नहीं रहे हैं, कहीं एक दो शब्द हरे या राम ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सावधानी से और ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, फिर उच्चारण करना चाहिए। तो ये आदेश किनका है, शिव जी का है। तो जो शिव जी जैसे महान महाभागवतों के पद चिन्हों में चलेंगे, निश्चित ही वो चरम सीमा को प्राप्त कर लेंगे। और प्रचेताओं के साथ ऐसे ही हुआ और आगे चल के हम ये देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, टीका है? हाँ हरे राम प्रभु।
ये जपा और संकीर्तन, तो कलयुग का ये संकीर्तन बोलते हैं, महाराज जब जपा करते हैं तो ये जपा का ऊपर हम जोर देते हैं, 16 माला 4 नियम, और हमारा जो आंदोलन हरि नाम संकीर्तन। तो मेरा प्रश्न ये है कि जपा और कीर्तन में तो बखीर सामू सिंधु के अनुसार जो धीरे बोलते हैं वो जपा है, तो और जो जो जोर से उच्चारण करते हैं वो कीर्तन होता है, मगर फल दोनों का एक ही है क्या, या पहले इसका फल क्या है, दोनों का अंतर क्या है? ये
दोनों ही कीर्तन है। कीर्तन क्या है?
भगवान की कीर्ति का गुणगान,
कीर्ति का गान करना। कीर्ति, कीर्ति मतलब ग्लोरी, भगवान की कीर्ति का गान करना ये कीर्तन है। तो भगवान की कीर्ति किस में है? हर चीज़ में है, उनके वर्णन में है, उनके नामों में भी है। तो भगवान के नाम भगवान की कीर्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से, क्यों?
भगवान का नाम कीर्ति के तो आधारित है, कृष्ण यानी सर्व आकर्षित है।
हाँ, तो जब हम भगवान को कृष्ण कह के संबोधित करते हैं, हम भगवान का कि कीर्ति का गान करें कि भगवान कितने आकर्षक हैं, सर्व आकर्षक हैं, गोविंद, हम गान कर रहे हैं उनकी लीलाओं का, कि भगवान गायों के ऊपर कृपा करते हैं, गाय बहुत प्रिय हैं उनके, इंद्रियों गायों के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करना ये भी कीर्तन होता है, भगवान की कथा बोलना यह भी कीर्तन होता है। तो कीर्तन ये जप के रूप में हो सकता है या जोर से करने उच्चारण करके हो सकता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जोर से बोलना ये सबसे लाभदायक है, क्योंकि न केवल स्वयं हमारा लाभ होता है परंतु अन्यों का भी लाभ होता है। इसलिए कलयुग में विशेष करके ये नाम संकीर्तन का रास्ता है। और कीर्तन जब हम करते हैं, जब भी जब हम करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि पास में भी थोड़े लोग सुन सके, हमारे पास में हमारे आचार्यों ने जो हमें रास्ता बताया है उसके अनुसार हम चलते हैं। तो हमारे गोस्वामीगण भी हैं, षड गोस्वामीगण हैं, अन्य आचार्यगण हैं, प्रभुपाद जी भी, उन्होंने बताया कि माला करना चाहिए, महामंत्र का जप के और साथ साथ कीर्तन भी करना चाहिए, संकीर्तन। तो संकीर्तन और कीर्तन में अंतर क्या है? जब हम जप करते हैं वो कीर्तन है, संकीर्तन क्या है? बहुभीर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम। तो जब बहुभी मिलित्वा बहुत सारे लोग मिलके जब भगवान का कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। इसमें शक्ति अधिक हो जाती है। इसलिए हमें दोनों करने चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसे हमें आदेश दिया है। दोनों अपने जगह में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
एक प्रश्न कंटिन्यू होता है तो मुझे कीर्तन में बहुत आनंद आता है, जपा में नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कीर्तन करूँगा जपा में, क्योंकि दोनों का फल एक ही रहेगा।
हाँ, तो 16 माला जितना हो उतना कीर्तन करो ऐसा बोलो कीर्तन अच्छा लगता है ना, तो खूब करो, हरे कृष्णा ऐसे कीर्तन करो, लेकिन 16 गुना 108 बार करो, इतने लंबे समय तक कीर्तन करो। कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अभी हम जब जोर से करते हैं, तेज गति से करते हैं, तब भी पौने दो घंटे तो लग ही जाते हैं। अब कीर्तन के रूप में ये करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, उनको जप नहीं अच्छा लगता, कीर्तन अच्छा लगता है, तो इतना कीर्तन करना चाहिए। तो परंतु और एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है ये बात नहीं है। आचार्यों ने हमें क्या आदेश दिया है वो महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ये 16 माला कम से कम जप करने का आदेश दिया है, तो वो पालन हमें करना है, और धीरे धीरे से करके उसके प्रति एक रुचि जागृत करनी है। आए तो हरे कृष्णा, ठीक है। यहाँ पर हमारे विशेष अतिथि आज आए हैं, हरिकेश्वर प्रभु, महानंद प्रभु और ज्वालना माता जी, इनको हम हरे हरि बोल कह के स्वागत करेंगे आज।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।